एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मसीह को तेरा इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। अब से मसीह को तेरा इंतजार है, इंतजार। यहाँ जीवन से मौत है सस्ती, दीप नहीं यहाँ दिल जलते हैं, फूल नहीं कांटे मिलते हैं। यहाँ प्यार की कद्र नहीं है, कोई किसी का यार नहीं है, जब तक धन है साथ रहेंगे, धन के साथ तुम्हें छोड़ेंगे। ये पैसों की दुनिया माया जाल है, ये दुनिया, ये पैसों की दुनिया माया जाल, मुश्किल करती है, इंतजार है, इंतजार है, कब से मसीह को तेरा इंतजार है, इंतजार। बंधन तोड़ के आ जा, जग की माया छोड़ के आ जा, तेरे आने से जाना आएगी, खुशियों की बहार आएगी, अनंत जीवन तुझको देगा, अपना वतन तेरे नाम करेगा। सुन ले मेरा कहना, तू जल्दी आ जाना, सुन ले मेरा कहना, तू जल्दी आ जाना।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे, हमारे हृदयों को खोल दे, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं और हमें समझने के लिए मदद कर। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन से आशीषित कर, उन्हें तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मन के दीन। प्यारो, आइए हम बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़े, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:3 पद में। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वचनों में यीशु ने सच्ची खुशी के लिए नुक्से की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की। आज हम पता लगाएंगे कि आत्मा में गरीब कौन है और मसीह ने उन पर जो आशीर्वाद घोषित किए हैं उन्हें हम उजागर करेंगे। पहाड़ पर मसीह के अद्भुत उपदेश का अध्ययन विश्वासी को सिखाएगा कि उन लोगों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिन्हें प्रभु धन्य कहते हैं। ये आशीर्वाद पूरे मानव परिवार के लिए उनके मसीह के अभिवादन थे। पहाड़ी उपदेश को सुनने के लिए एकत्रित विशाल भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि वे एक पल के लिए भूल गए थे कि वे स्वर्ग में नहीं हैं, और उन्होंने प्रकाश की दुनिया के परिचित अभिवादन का उपयोग किया। उनके होठों से आशीर्वाद बहता था जैसे कि एक लंबे समय से बंद फुहारे से बहता हो। पहाड़ी उपदेश हमारे नैतिक दिवालियापन के मुखौटे को भेदता है, जिसमें हम केवल कानून के अक्षर को ही मानते हैं लेकिन उसकी भावना को जीने की उपेक्षा करते हैं। यह हमें इस विश्वास के साथ दिल से छूता है कि हमें मसीह की आत्मा और धार्मिकता की सख्त जरूरत है, चाहे हम या दूसरे हमें कितना भी नैतिक क्यों ना समझें। आनंद का विषय हम मती 5:3-11 में पढ़ पाते हैं, जो यीशु मसीह का वचन है। पहाड़ पर उपदेश के आरंभिक शब्दों में मसीह हर मानव हृदय की सर्वोच्च इच्छा खुशी के बारे में बात करते हैं। यह इच्छा मनुष्य में स्वयं सृष्टिकर्ता द्वारा डाली गई थी और मूल रूप से उसे उस परमेश्वर के साथ सहयोग के माध्यम से सच्ची खुशी पाने के लिए प्रेरित करने के लिए नियुक्त की गई थी जिसने उसे बनाया था। पाप तब शामिल होता है जब मनुष्य खुशी को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक शॉर्टकट के माध्यम से जो दिव्य आवश्यकताओं के प्रति आज्ञाकारिता को दरकिनार करता है। प्यारो, आइए हम पढ़ते हैं यीशु के धन्य वचन जो हम पाते हैं मती 5:3-11 में। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यह यीशु मसीह का वचन है। इस प्रकार ईश्वरीय अनुग्रह के राजा के रूप में अपने उद्घाटन भाषण की शुरुआत में मसीह ने घोषणा की कि राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों के दिलों में अदन की खोई हुई खुशी को पुनः स्थापित करना है, और जो लोग सक्रिय द्वार और सक्रिय मार्ग से प्रवेश करना चुनते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती 7:13-14 में, उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी। उन्हें आंतरिक शांति और आनंद मिलेगा, दिल और आत्मा के लिए सच्ची और स्थायी संतुष्टि, जो केवल तब आती है जब परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है उनके दिल और दिमाग को मसीह यीशु के माध्यम से रखने के लिए मौजूद है। फिलिपियों 4:7, धन्य है वे जो गरीब हैं। इसे हम पाते हैं मती 5:3 में और लूका 6:20 में भी। यीशु विशेष रूप से बताते हैं कि जिस गरीबी का वे उल्लेख कर रहे हैं वह केवल सांसारिक संपत्ति की गरीबी नहीं बल्कि आत्मा की गरीबी है। यह आत्मा आध्यात्मिक कमी की चेतना किसी के आध्यात्मिक संपत्ति का आकलन करने में एक निश्चित ईमानदारी और विनम्रता का संकेत देती है। इसके बिना भौतिक रूप से गरीब लोग खुद ही धन के प्रति आसक्त हो सकते हैं और उन्हें पाने की तीव्र इच्छा रख सकते हैं। फिर अमीरों की तरह गरीब सांसारिक संपत्ति की इच्छा के गुलाम आत्मा में गरीब नहीं है। खुश हैं वे लोग, उन्होंने कहा, जो अपनी आध्यात्मिक दरिद्रता को पहचानते हैं और अपने उद्धार की आवश्यकता को महसूस करते हैं। सुसमाचार गरीबों को प्रचारित किया जाना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से अभिमानी लोगों को नहीं, जो दावा करते हैं कि वे अमीर हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को प्रकट किया जाता है जो विनम्र और पश्चातापी हैं। पाप के लिए केवल एक ही फुहारा खोला गया है, आत्मा में गरीबों के लिए एक फुहारा। परमेश्वर राज के वारिस के लिए अमीरों के बजाय गरीबों को क्यों चुनता है? प्यारो, आप क्या समझते हैं? याकूब 2:5 कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उसे प्रेम रखते हैं। वास्तव में परमेश्वर विशेष समूहों के प्रति पक्षपाती नहीं है। वह किसी को भी बहिष्कृत नहीं करता। यदि मसीहाई वादे विशेष रूप से वंचितों, दुनिया के गरीबों को संबोधित है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परिस्थिति के कारण वे परमेश्वर की ओर मुड़ने और सभी चीजों के लिए उसकी ओर देखने के लिए अधिक इच्छुक हैं। धनवानों की कौन सी विशेषता परमेश्वर के राज्य को पाने में बाधा बनती है? प्यारो, बाइबल कहती है, धन का लोभ पाप का जड़ है। बाधा धन नहीं है बल्कि धन के प्रति स्वार्थी लगाव, उसके लिए लालची खोज, उस पर असीमित भरोसा है। यह कहने के बाद कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है, यीशु ने अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहा, धन पर भरोसा रखने वालों के लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। यह बात हम लिखा हुआ पाते हैं मरकुस 10:23-24 में। लेकिन गरीबों के लिए खुशखबरी है, यह हम लुका 4:18-19 में पढ़ते हैं। यीशु मसीह गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए। हमारे प्रभु की शिक्षा और सेवकाई में गरीबों का महत्वपूर्ण स्थान था। यह समाज में उपेक्षित लोगों के लिए उनके हृदय में अनुग्रह और करुणा की प्रचुरता के बारे में बहुत कुछ कहता है। और सौभाग्य से प्रारंभिक कलीसिया जानती थी कि गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने में उनके उदाहरण का अनुसरण कैसे किया जाए। मसीह गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया था। वह उन लोगों तक पहुंचा जहां वे थे। वह उनकी समझ में स्पष्ट सरल सत्य लाया। मसीह इस धरती पर गरीबों और पीड़ितों के बीच चलने और काम करने के लिए आए थे। उन्हें उनके ध्यान का सबसे बड़ा हिस्सा मिला और आज अपने बच्चों के रूप में वह गरीबों और जरूरतमंदों से मिलते हैं, उनके दुख दूर करते हैं और उनकी पीड़ा कम करते हैं। प्यारो, बाइबल में जिन गरीबों की बात की गई है वे जरूरी नहीं कि दरिद्र ही हों। इस शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर किसानों के लिए किया जाता था जिन्हें सत्ताधारी यहूदियों और कब्जा करने वाली सत्ता दोनों ने ही तबाह कर दिया था, खास तौर पर निर्वासन के बाद। इसराइल के गरीबों का उल्लेख कुछ भजनों में किया गया है, जैसे हम देख सकते हैं भजन 40:17 में और 69:33 और 109:31 में। भविष्यवक्ता उनके रक्षक थे, उन्हीं के लिए उन्होंने मसीहाई राज की घोषणा की थी। वे ही वे लोग हैं जिनके बारे में कहा गया था कि वे इज़राइल की संतावना और यरूशलेम में छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, लुका 2:25-38। हालांकि वे उसके राज्य की प्रकृति के बारे में गलत थे। परमेश्वर ने मसीहा के आगमन की घोषणा सबसे पहले उन्हीं के सामने की, जैसे चरवाहों सिमोन अन्ना के सामने। यूसुफ और मरियम भी उन्हीं में से थे, वे जो मंदिर में केवल गरीबों की बलि चढ़ाने में सक्षम थे। आप देख सकते हैं लुका 2:21-24 में। यह इज़राइल के गरीबों के लिए भी था कि यीशु ने सबसे पहले उद्धार की खुशखबरी का प्रचार किया। आइए हम देखते हैं एक दृष्टांत में जहां भोज में आमंत्रित किया जाता है, वहां कैसे लोग आते हैं। हम इसे पढ़ते हैं लुका 14:21 में। यहूदी आमतौर पर मानते थे कि आर्थिक या शारीरिक रूप से पीड़ित लोग ईश्वर की कृपा में नहीं हैं, और इस प्रकार ये वर्ग अक्सर अपने साथियों द्वारा तिरस्कृत और उपेक्षित होते थे। मसीह के दिनों में धार्मिक नेता अपनी धार्मिकता और धार्मिक विरासत में काफी समृद्ध महसूस करते थे। वे अपने आध्यात्मिक दिवालियापन के प्रति इतने अंधे थे और उन्हें मसीह द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक खजाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वे अपने आप में इतने भरे हुए थे कि मसीह का अनुग्रह उनके घमंडी दिलों में प्रवेश नहीं कर सका। दूसरी ओर गरीब और तिरस्कृत लोगों ने अपनी महान आध्यात्मिक कमी को महसूस किया और इस प्रकार वे ईश्वर की कृपा के लिए खुले थे। मसीह के शब्द उनकी आहत आत्माओं के लिए मरहम थे। उनमें उनके आध्यात्मिक क्षमता की आशा को जगाते हुए खुद को मसीह से जोड़ने में आध्यात्मिक अर्थ में गरीब टुंडे लंगड़े अंधे और कर असूलने वाले कौन है जिन्हें आप अपनी दुनिया में देखते हैं? होठ आत्मा की दरिद्रता व्यक्त कर सकते हैं जिसे हृदय स्वीकार नहीं करता। आत्मा की दरिद्रता के बारे में परमेश्वर से बात करते समय हृदय अपनी श्रेष्ठ विनम्रता और उच्च धार्मिकता के दम से फूल सकता है। क्या आप अपने हृदय को जानने उसके उद्देश्यों की गहराई को समझने में सक्षम हैं? आइए हम हमारा यीशु हमारा आदर्श यीशु के बारे में सीखें। यीशु हमारा सही आदर्श है जो कि हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में। चाहे लोग जीवन के सभी पहलुओं में कितने भी अमीर क्यों ना हो, मसीह के बिना वे निराशाजनक रूप से गरीब हैं। अपनी असुरक्षा में व्यक्ति दृढ़ता से उन सभी धन या पदों को पकड़ लेते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके पास हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दूसरे उनका फायदा ना उठाएं। फिर भी समय के साथ दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित लोग कुछ भी नहीं लेकर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर आए थे। हालांकि मसीह पूरे ब्रह्मांड के सभी धन का स्रोत स्वेच्छा से गरीब बन गया, हमारे बीच में गरीब के रूप में आया ताकि आप और मैं उसमें अमीर बन सके। यह कितना बढ़िया आदान प्रदान है हमारी गरीबी के लिए उसका धन। क्या आपने मसीह में गरीबी से धनवान होने के इस महान परिवर्तन का अनुभव किया है? जब मसीह ने अपने उच्च आदेश को छोड़ने अनंत ऊंचाई से नीचे उतरने और मानवता को अपनाने की कृपा की तो वह अपने लिए मानवता की कोई भी स्थिति ले सकता था जिसे वह चुन सकता था, लेकिन महानता और पद उसके लिए कुछ भी नहीं थे और उसने जीवन का सबसे निम्न और सबसे विनम्र मार्ग चुना। उनका जन्म स्थान बेतलहम था और एक तरफ उनके माता पिता गरीब थे लेकिन दुनिया के मालिक परमेश्वर उनके पिता थे। यदि उसके पास दिखावे धन वैभव का आभास होता तो मानवता का सबसे गरीब वर्ग उसके समाज से दूर रहता। इसलिए उसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों की दीन स्थिति को चुना। नम्रता का सबसे बढ़िया उदाहरण हम फिलिपी 2:5-8 में पाते हैं जहां यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वह धनी होने पर भी इस पृथ्वी पर आया, गरीब रहकर जिया, हमारे लिए नमूना दिखाया और हमारे पापों के लिए मरने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि क्रूस में मरने के लिए तैयार था हमें बचाने के लिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा मन भी यीशु मसीह के समान नम्र मन होना चाहिए। मसीह का मन रखने का क्या मतलब है प्यारो? एक कहानी के अनुसार एक शहर में सबसे विनम्र व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। उसकी विनम्रता के सम्मान में उसे एक रिबन या फीता दिया गया। बाद में उसे सार्वजनिक रूप से रिबन पहने हुए देखा गया, इसलिए शहर के लोगों ने उसे रिबन फीता वापस लेने का फैसला किया। जब तक हम मसीह का मन अपने अंदर नहीं आने देते तब तक हमारी सच्ची नम्रता भी घमंड और सेखी बखारने की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में बदल सकती है। प्यारो, यह राज्य जैसा कि मसीह के श्रोताओं ने आशा की थी एक लौकिक और सांसारिक प्रभुत्व नहीं है। मसीह लोगों के लिए अपने प्रेम अपने अनुग्रह अपनी धार्मिकता के आध्यात्मिक राज्य को खोल रहा था। मसीहा के शासन का प्रतीक मनुष्य के पुत्र की समानता से पहचाना जाता है। उसकी प्रजा आत्मा में दीन दीन नम्र धार्मिकता के कारण सताए गए लोग हैं। स्वर्ग का राज्य उनका है, यद्यपि अभी तक पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उनमें वह कार्य शुरू हो गया है जो उन्हें ज्योति में संतों की विरासत के भागी होने के योग्य बनाएगा। प्यारो, किसी उपहार की सबसे अधिक सराहना तब होती है जब वह किसी महसूस की गई जरूरत को पूरा करता है। परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ भी ऐसा ही है। जो लोग अपनी जरूरत को पहचानते हैं वे ईश्वर के अनुग्रह के प्रस्ताव के लिए सबसे अधिक आभारी होते हैं और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आप भी यीशु मसीह के वचन सुनकर गदगद हैं और आप आनंदित हो सकते हैं? आपको प्रभु यीशु मसीह धनी बना सकता है जब आप उसके पास आते हैं। हो सके आप मन के गरीब हों, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को चाहता है जो अपना कमी महसूस करते हैं, धार्मिकता की कमी महसूस करते हैं। वे लोग यीशु के पास आ सकते हैं, यीशु मसीह उन्हें भर देंगे और उन्हें तैयार करेंगे, स्वर्ग के राज के लिए तैयार करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप यीशु के पास आइए, उसके वचनों को सुनिए, उसके वचनों को अपनाइए, उसे अपनाइए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं धन्य वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तो महान दया के कारण प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वह हमें स्वर्ग का राज्य दिखा सके, सच्चाई के मार्ग में ले सके, हमें तेरा प्रेम को दिखा सके। पिता परमेश्वर, हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में तेरा प्रेम को देखने दे और हमें तेरा आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और उसके चरित्र को अपनाने में मदद कर। हम सबों के संग हो और हमें आशीष दे पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ श्रोताओं को विशेष आशीष दे पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।